దాని గొంగనే ఐ జస్ట్
మాతాజీకి
కృష్ణ ఆజ్ హమారా పరమ సౌభాగ్య హై కి హమారే బీచ్ ఏక్ విశేష కోయి అతిథి ఆజ్ ఆయ హై ఉన్మే సే హై మధ్యప్రదేశ్ కే హైకోర్ట్ కే జస్టిస్ జస్టిస్ గంగోలే అండ్ హిజ్ వైఫ్ ఉన్కే పత్ని మిసెస్ గంగోలే ఔర్ హమారే పాస్ సాత్ ఆయే హై అడిషనల్ జజ్ మిస్టర్ ఏకే తివారీ ఓ హీ లెఫ్ట్ ఓకే అచ్చా ఔర్ దే ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ ఐ గాట్ आज हमारा सेमिनार का अंतिम क्लास है और परसों आप सब तैयार हुए हैं परसों के लिए परसों इम्तिहान होगा परीक्षा होगा ओ हाँ हाँ मिस्टर तिवारी जो मैं बोल रहा था हमारे बीच आए हैं एडिशनल जज Mr. A.K. Tiwari. Or Magistrate Mr. P.K. Sharma. Bahut dhanyavad. Aap sab aaye hain. Ye hum to mante hain ki ye hamara bahut saubhag hai. Achha. मिस्टर आर एस ठक्कर भी आए हैं मैजिस्ट्रेट तो आज हम शुरू करेंगे 29 से 45 तक हम कल तक किए थे वो हम एक साथ उसको गाएंगे सब किताब आपके पास है ब्रह्म संहिता सबके पास सब लाए हैं अच्छा गेट सम बुक्स गंगानारायण फॉर देम ओके या जस्टिस गंगोले वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रह्म संहिता वी विल रिसाइट फ्रॉम 29 ऑनवर्ड्स We had covered the whole book since last three days. अच्छा हम शुरू करेंगे पहला श्लोक से पहला श्लोक के बाद हम 29 श्लोक से पाठ करते रहेंगे पहला श्लोक ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह అనాదిరాదిర్ గోవిందః సర్వకారణ కారణం చింతామణి ప్రకర సద్మసుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి వేణుం కనంతమరవిందదళాయతాక్షం వరహావతం సమసితంబుదసుందరంగం కందర్పకోటికమనీయ విశేషశోభం గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి ఆలోలచంద్రకలసద్వనమాల్యవంశీ రత్నాంగదం ప్రణయకేలికళావిలాషం श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि जस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। आनन्दचिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवजौवनञ्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थस्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्ततत्ते गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्त अण्डान्तरस्थ परमानुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितो धियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनजानभूषा सुक्तैर्जमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाभिताभिस्ताभिर्जैव निजरूपतया कलाभि गोलोको एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत् परमपुमाञ्जो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिशेष वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि जस्य जगदण्डसतानि सूते त्रैगुन्नतद्विषयवेदवितायमाना सत्यावलम्बपरसत्यविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनोषु जप्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्तजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामश्रुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च जेना गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इच्छानुरूपमपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो या संभूतामपि तथा समुपैति कार्यात्। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा। ओके सो नाउ विल रिसाइट। अब मैं हम ये 45 श्लोक तक हम कर चुके हैं, तो अब जो हम पहले जो विचार किया था इस ग्रंथ में जो वर्णन किया है उसको जो विस्तार हम किया था उसके फिर से थोड़ा सा संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये सवाल पैदा होता है ब्रह्म संहिता क्या है। ये संहिता का मतलब है जो विशेष कोई महान व्यक्ति जो उपदेश देते हैं जो निर्देश देते हैं वो संहिता के रूप में उसको संकलन किया गया है। जैसे मनु का जो निर्देश है वो है मनु संहिता और ब्रह्मा जी का जो निर्देश है ये है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का 100 अध्याय है परंतु इस पृथ्वी पर केवल ये पंचम अध्याय हमें मिल रहा है, बाकी सब अप्रकट हो गए हैं, हमारे दर्शन में अब नहीं प्रकाशमान है। तो ये जो हम विचार जो कर रहे हैं चर्चा जो कर रहे हैं ब्रह्म संहिता का, ये ब्रह्म संहिता का केवल 1 अध्याय है, पंचम अध्याय। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी मंगलाचरण कर रहे हैं, मतलब भगवान को प्रार्थना के रूप में भगवान को वर्णन कर रहे हैं। भगवान कौन है? भगवान है ईश्वर परम कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण है परम ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है मालिक। विशेष विशेष स्थान का विशेष विशेष और विशेष विशेष कोटि का विशेष विशेष ईश्वर हो सकता है। जैसे ये जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का ईश्वर कौन है? हम कह सकते हैं कि उज्जैन का जो कलेक्टर साहब हैं वो है उज्जैन का ईश्वर। हाँ महाकाल वो तो है, महाकाल केवल उज्जैन का ही नहीं, महाकाल सारे संसार का ईश्वर है। महाकाल महेश्वर, उन्होंने महेश्वर है महा ईश्वर। तो ऐसे जो हम ईश्वर का विचार कर रहे हैं ऐसे मध्य प्रदेश का ईश्वर अब कौन है, यहाँ का जो मुख्यमंत्री जो है। वैसे भारत का ईश्वर कौन है, भारत का जो प्रधानमंत्री है या गवर्नर। वैसे हम जब देखते हैं तो सारे जगत का ईश्वर कौन है, परम ईश्वर, सबसे महान ईश्वर कौन है? परम ईश्वर है श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है श्री कृष्ण भगवान। अब ये भी विचार हम कर सकते हैं भगवान ये शब्द का अर्थ क्या होता है। भग अस्ति इति भगवान, जिनको जिनके पास भग है वो है भगवान। तो भग शब्द का अर्थ क्या होता है, भग शब्द का विश्लेषण करते हुए हमारे शास्त्र में ये वर्णन किया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नांग इति भगांगना, अर्थात जिनके पास समग्र ऐश्वर्य, समग्र संपद, समग्र संपदा, समग्र दौलत जिनके पास है, समग्र थोड़ा बहुत नहीं, पूरे जिनके पास है, पूरे ऐश्वर्य जिनके पास है, पूर्ण समग्र शक्ति जिनके पास है, समग्र जश यश ख्याति जिनके पास है, श्री मतलब सौंदर्य जिनके पास है, समग्र ज्ञान जिनके पास है और समग्र वैराग्य जिनके पास है, वो है भगवान। वो कौन है? वो है एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, वो है वो परम पुरुष जो एक और जिनका कोई दूसरा नहीं है, एकम एव अद्वितीय परम पुरुष। उनके बहुत सारे गुण के अनुसार उनके बहुत सारे नाम हैं, उनके बहुत सारे लीला के अनुसार उनके बहुत नाम हैं। जैसे उनका एक गुण है, वो है सर्व आकर्षक, सर्वाकर्षक, सबको आकर्षण करते हैं, उसके कारण उनका नाम है कृष्ण। उन्होंने परम आनंद विधान करते हैं, प्रदान करते हैं, उसके लिए उनका नाम है रमते इति राम, राम। उन्हें सारा संसार के सृष्टि करते हैं, उसके कारण उनका नाम है विष्णु। उन्हें सारे जीवों को पालन करते हैं, उसके कारण उनके नाम है नारायण। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में लीला विलास किए थे, उसके कारण उनका नाम है नंद नंदन, यशोदा नंदन। उन्होंने सारे गोपियों का नाथ है उनके, उसके कारण वो है गोपीनाथ। वो राधा रानी के बहुत प्यारे हैं, उसके कारण उनका और एक नाम है राधा बल्लभ। उन्होंने फिर नर मनुष्य और सिंह के रूप में प्रकट हुए थे कोई विशेष लीला प्रदर्शन करने के लिए, उसके कारण उनका और एक नाम है नृसिंह, नरसिंह। ऐसे भगवान की अनंत लीला और अनंत गुण के अनुसार उनके अनंत नाम हैं, परंतु वो एक एवं अद्वितीय है। तो और उनका जो विग्रह, उनका जो रूप है, वो है सत्चित आनंद। वो कुछ उनका जो रूप हमारा जैसा पंचभौतिक नहीं है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश से जैसे हमारा शरीर का प्रकाश हुआ है, उनका रूप ऐसा नहीं है। उनका रूप है सत चित आनंद, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सत का मतलब जो नित्य है, उनका रूप नित्य, अपरिवर्तनीय, अविनाशी, उसके कारण वो है उन्होंने सत, उन्होंने पूर्ण चेतन है और सारे चेतना उनमें से ही प्रकाश होता है, उसके कारण वो है चित और उन्होंने है आनंदमय। तो ये तीन आध्यात्मिक वस्तु सत चित आनंद के द्वारा उनका विग्रह प्रकाशमान है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उन्होंने अनादि के भी आदि, उन्होंने अनादि के, जिसका अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं है, उसका भी आदि है। अनादिर आदिर गोविंद, और उन्होंने सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण है वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वर्णन कर रहे हैं भगवान जहां विराज करते हैं वो कैसी स्थान है। वो स्थान एक सहस्र पत्र कमलं गोकुलाक्षं महत्पदं तत्कर्णिकारं तद्धाम तद अनंतांश
संभवम।
भगवान का जो धाम है गोलोक, वो एक सहस्र पत्र मतलब हजारों पंखुड़िया से बना युक्त एक कमल के भांति। सहस्र पत्र कमलम गोकुलाखंग, और उस स्थान का नाम है गोकुल, गोकुलाखंग महत्पदम। और उस कमल का जो कर्णिकार है वो कर्णिकार है भगवान का धाम, और उस धाम का विस्तार हुआ है अनंत की प्रभाव से, अनंतांश संभवम। ऐसे भगवान के धाम वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कैसे उनका उद्भव हुआ, और जैसे भगवान के गर्भोदोक्षाई विष्णु के नाभि कमल से एक कमल का उत्पत्ति हुआ था, और उस कमल में ब्रह्मा जी विराज हुए थे, ब्रह्मा जी को प्रकाश हुआ था। तो ब्रह्मा जी को जब प्रकाश हुआ था इस भौतिक जगत में, ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी का पूर्ण ज्ञान का विकास हुआ आंखें खोलते ही, परंतु उनको अतीत का कोई ज्ञान या कोई स्मृति नहीं था, उनको पता नहीं था कि वो कौन है। तो उन्होंने सोचा कि अगर उनको पता चलेगा कि वो कहां से आए हैं तब उनको पता चलेगा कि वो कौन है। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी हजारों साल तक नीचे वो कमल की जो नाल है और डांटा से नीचे उतरते रहे, परंतु उस कमल का तल नहीं प्राप्त हो सका। तब ब्रह्मा जी फिर से वो कमल के ऊपर आकर बैठे। तब भगवान ब्रह्मा जी को हृदय से एक निर्देश दिया, ब्रह्मा तुम अपना चेतना को तुम अंतर्मुखी करो। और जब ब्रह्मा जी भगवान की ये निर्देश अनुसार तपस्या करना शुरू किया, मतलब उनका चेतना को बाहर से खींचकर प्रत्याहार करके अंतर्मुखी करना शुरू किया, तब भगवान अपना बांसुरी बजाकर ब्रह्मा जी को गायत्री मंत्र प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने उस गायत्री को ध्यान करके ध्यान के माध्यम ब्रह्मा जी को हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। इसका मतलब भगवान ब्रह्मा जी भगवान को साक्षात दर्शन किए, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान को दर्शन किया तो भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान जहां विराज करते हैं उस स्थान का भी दर्शन हुआ उनका, और उन स्थान का वर्णन किया, भगवान का वर्णन किया, और भगवान के साथ इस भौतिक जगत का क्या संयोग है, और भौतिक जगत के सारे वस्तुओं के साथ, सारे व्यक्तियों के साथ उनका क्या संपर्क है, आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का, ब्रह्मा जी ये भगवान का जो स्थिति है उसका वर्णन ब्रह्मा जी करना शुरू किया। तो जैसे ऐसे वर्णन दो श्लोक 2 से 28 तक ऐसे ब्रह्मा जी का वर्णन हुआ। तो मैं फिर से 27 श्लोक और 28 श्लोक का मैं अनुवाद मैं फिर से पाठ करूंगा ताकि हमको याद आ जाए ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उसका असल तात्पर्य क्या था। तद अनंतर, ये 27 श्लोक का अनुवाद है, तद अनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणुध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से स्वजनित ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मजोनी ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। द्विजत्व का मतलब क्या होता है? दूसरा जन्म। पहला जन्म होता है पिता माता से, शरीर का जन्म होता है, और दूसरा जन्म जो होता है वो होता है आत्मा का जन्म। आत्मा का जन्म कैसे होता है? आत्मा का जन्म होता है गायत्री माता और गुरु पिता के माध्यम। गुरुदेव है पिता और गायत्री माता। और यहां ब्रह्मा जी का गुरु कौन है? ब्रह्मा जी का गुरु भगवान स्वयं। उसके कारण भगवान को आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि उनसे ही सबसे पहले इस ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त हुए थे। आदि शिष्य है ब्रह्मा और आदि गुरु है भगवान। भगवान दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक जगत के ज्ञान ब्रह्मा जी को ऐसे प्रदान किया था। श्लोक 28 का अनुवाद है, त्रिवेदमयी गायत्री के स्मरण द्वारा प्रबुद्ध होकर ब्रह्मा सत्य सागर से परिचित हो गए। तब उन्होंने समस्त वेदों के सार स्वरूप श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। जो स्तुति हम एक साथ किए थे 45 श्लोक तक, 29 से लेकर 45, तो 29 से लेकर 45 का मतलब कितना हुआ? 16, 17, ठीक है। तो अब हम 46 श्लोक को एक साथ गाएंगे।
दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्या दीपायते विवृतहेतु समान धर्मा जस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
अर्थात दीपार्चिरेव हि दशान्तरम अभ्युपेत्य, जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाता है और दीप जब जल जाता है तब पहला दीप में जितना किरण जितना ज्योति है दूसरा दीप में से ही उतना ही ज्योति निकलता है, दोनों दीप में कोई अंतर नहीं रहता है। फिर भी पहला दीप जो है उस दीप से ही सारे और दीपों का प्रज्वलन हुआ था। वैसे ही भगवान से विभिन्न अवतारों का प्रकाश हुआ है, जो मैं पहले विचार किया था, रामादि मूर्ति शुकला नियमे नतिष्ठन नाना अवतारम अकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान। जो ये सारे अवतारे जो अवतारों भगवान का ही श्री कृष्ण का ही विस्तार है और वो विस्तार में कोई अंतर नहीं है, उसका भी वर्णन यहां हो रहा है। जैसे हम 10 अवतार को यहां भगवान का यह 10 अवतार का वर्णन हुआ है और श्रीमद् भागवत में भगवान को 21 अवतार का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत में 21 अवतारों का वर्णन करने के बाद क्या बताया गया? वहां वर्णन किया गया कि एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सब भगवान के अवतार हैं परंतु श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस ऐसा ही वर्णन ब्रह्म संहिता भी पहले हो चुका है कि नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः पुमान। जो तो उसका विश्लेषण यहां हो रहा है कि दीपार्चिरेव हि दशान्तरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है परंतु गुणों में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान और भगवान का अवतारों में अंतर क्या है? अंतर, कोई अंतर नहीं है, एक ही पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम, एक ही व्यक्ति प्रकाश करते हैं अपने आप को ऐसे। जैसे उस रोज हम एक दृष्टांत दिया था भगवान का विभिन्न अवतारों में से अंतर कैसा होता है, याद है आपको? मैं एक जज का दृष्टांत दिया था और अब हमारे समक्ष जज साहब उपस्थित हैं। मैं एक दृष्टांत दे रहा था कि हाई कोर्ट का जो जज है उनको कोर्ट में उनको सब माय लॉर्ड करके संबोधन करते हैं, एक रूप से कोर्ट में उनको दर्शन किया जाता है। उन्होंने जब क्लब में जाते हैं तब उनको उनका उनका दोस्तों ने क्या बोलते हैं, जस्टिस सो एंड सो। और उनका घर में जब उन्हें जाते हैं तब उनका पत्नी उनको एक रूप से संबोधन करते हैं, उनका माता उनको अपना बच्चा के रूप में संबोधन करते हैं, उनके लड़का लड़की अपने पिता के रूप में उनका संबोधन करते हैं। एक ही व्यक्ति है, भिन्न भिन्न स्थान में उनका प्रकाश भिन्न भिन्न रूप जैसा होता है, परंतु व्यक्ति एक ही है। वैसे ही भगवान का सारे अवतारों जो है वो एक ही भगवान का भिन्न भिन्न रूप से प्रकाश होता है भगवान का। फिर और एक विचार ये हमको याद रखना, भगवान का प्रकाश दो रूप से होता है, एक है स्वांश, एक है विभिन्नांश। स्वांश क्या है? भगवान जो अपने आप को विस्तार करते हैं, स्व अंश जो है अवतार, और विभिन्नांश जीव। हम सब भगवान का विभिन्न अंश हैं। हम भगवान से अलग हैं, मतलब हम भगवान से दूसरा है, और भगवान का अवतार और भगवान में कोई अंतर नहीं है, परंतु हम और भगवान में अंतर है। कैसे? भगवान है परम पुरुष और हम है उनका अंश। कैसे? जैसे सूरज और सूरज का किरण, किरण कण, सूरज का किरण कण में भी सूरज का गुण का प्रकाश होता है, सूरज का एक छोटा सा किरण कण में भी सूरज का जो गुण है वो गुण का प्रकाश होता है, परंतु एक कण सूरज नहीं है। जैसे पानी और पानी का एक बूंद और समुन्दर, पानी का बूंद भी पानी और समुन्दर भी पानी, परंतु कोई भी एक बूंद को समुन्दर नहीं कहेंगे। वैसे ही जीव और भगवान में अंतर है, गुण के अनुसार एक है परंतु आयतन की विचार से अंतर है। तो दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायति विवृत हेतु समान धर्म। उनका धर्म समान, गुण उनमें समान है। जैसे हम देख रहे हैं यहां भगवान का एक अवतार क्या है, मीन के रूप में, मछली के रूप में भगवान अवतरण किए थे। क्यों? प्रलय की समय वेद को उद्धार करने के लिए। प्रलय पयधि जले धृतवान असि वेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर। भगवान मीन मत्स्यावतार के रूप में अवतरण किए थे। तो कृष्ण और मीन में, मत्स्यावतार में कोई अंतर है? नहीं, वो कृष्ण ही है। उसके बाद कूर्मा, उसके बाद वराह, उसके बाद नृसिंह, उसके बाद वामन, उसके पश्चात परशुराम, उसके पश्चात श्री रामचंद्र, श्री बलराम, बुद्ध और कल्कि, एक ही भगवान का विशेष विशेष रूप में अवतरण। अच्छा, श्लोक 47। जकार नरनव जले भजति स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपा
आधार शक्तिमवलंब परां स्वमूर्तिं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
ज कारणर्णव जले भजति स्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूप। जो कारण समुद्र में, कारण अर्णव का मतलब, अर्णव शब्द का अर्थ क्या है, अर्णव, अर्णव शब्द का अर्थ है समुद्र, समुद्र। कारण अर्णव का मतलब है कारण समुद्र, कारण समुद्र, कारण समुद्र। जैसे यहां पानी का समुद्र है, वैसे और सारे, बहुत सारे समुद्र है इस भूमंडल में ही, और सारे समुद्र है जिसका वर्णन शास्त्र में किया गया है। जैसे ये तो हम जो समुद्र हम देख रहे हैं, वो कौन सी समुद्र है, वो है लवण समुद्र, नमक का समुद्र। इसके बाद सूरा का समुद्र है, मतलब सूरा, सूरा का वाइन, वाइन का हिंदी क्या है, शराब, शराब, शराब का समुद्र है, घी का समुद्र है, और दूध का समुद्र है, पानी का समुद्र है, ऐसे भिन्न भिन्न समुद्र हैं। परंतु इस भौतिक जगत का जो भौतिक जगत वो है, उसका प्रकाश हुआ है कारण समुद्र से। कारण, कारण, कारण भी एक पदार्थ है। जो कुछ होता है यहां, उसके पश्चात क्या है, उसके पीछे कारण है। तो ये कारण एक वस्तु है, वो कारण का ही एक समुद्र है। और उस कारणार्णव जले भजति स्म जोग निद्राम, भगवान महाविष्णु के रूप में वहां विराज, वहां लेटे हुए हैं। और वहां जोग निद्रा में उन्हें शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। जोग निद्राम अनंत जग, और उनका रोमकूप से अनंत जगत ब्रह्मांड का सृष्टि हो रहा है। जैसे पानी में अगर हम श्वास लेते हैं तो उस श्वास से बुदबुद उत्पन्न होता है, वैसे भगवान जो कारण समुद्र में सोए हुए हैं, उनका रोमकूप से, जो उन्होंने केवल उनका नाक और मुंह से ही श्वास नहीं ले रहे हैं, उनका सारे रोम रोम से भी उन्होंने श्वास ले रहे हैं, रोमकूप से भी। हम लोग भी रोमकूप से भी हम श्वास लेते हैं, हमको पता नहीं है, परंतु मेडिकल साइंस इसको स्वीकार करते हैं। वी ब्रीद थ्रू आवर पोर्स ऑफ द स्किन्स। तो भगवान भी वैसे जो श्वास ले रहे हैं, वो सांस निकलने से जो बुदबुद का सृष्टि होता है, वो एक एक बुदबुद है, एक एक ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड में भगवान तब, अच्छा, तो ये जो वो कौन है, महाविष्णु, महाविष्णु जो कारण अर्णव जले भजति स्म जोग निद्राम जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिम अवलंब परांग स्वमूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो अपनी आधार शक्ति स्वरूप अनंत शेष नामक श्रेष्ठ मूर्ति का अवलंबन कर अपने रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांडों के समय समाये हुए जोग निद्रा का आनंद लेते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। अच्छा, श्लोक 48। जस्यैक निःशशित कालम अथावलंब जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान सह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, ये ब्रह्मा का आयु कितना है आपको पता है? जश्चैक निश्चित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। अर्थात जिनका एक निश्वास, एक श्वास, श्वास का मतलब एक श्वास छोड़ना और ग्रहण करना, निश्वास और प्रश्वास, ये दोनों मिलकर एक श्वास होता है। तो ये उनका एक श्वास है जगदंड नाथा। जगद अंड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। और नाथा का मतलब उनका जो नाथ, जगद अंड का, ब्रह्मांड का नाथ कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का आयु कितना तक होता है? भगवान का एक श्वास। जस्य एक निश्चित, जस्य एक निश्चित कालम अथावलंब, वो काल, वो समय को अवलंबन करके जिनका जीवन का स्थिति होता है। जस्य एक निश्चित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलजा, उनका रोमकूप से निकला हुआ एक ब्रह्मा, लोम विलजा जगदंड, रोमकूप से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मांड, उसके नाथ मतलब ब्रह्मा के। केवल एक ही ब्रह्मा नहीं, असंख्य ब्रह्मा है, असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मा जी भी है, परंतु उनका आयु का स्थिति हम ऐसे विचार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन का आयतन कितना होता है? सहस्र युग पर्यंतम, 1000 चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार युग मिलकर एक चतुर्युग होता है। तो ये चतुर्युग का स्थिति कितना? जैसे सत्य त्रेता द्वापर कली, ये कलियुग का स्थिति कितना है? 432,000 साल, 432,000 साल। और द्वापर युग का स्थिति कितना है? 864,000 साल। त्रेता युग का स्थिति कितना? 12,96,000 साल। और सत्ययुग का स्थिति कितना? 17,28,000 साल। तो ये चार इकट्ठा करके कितना होता है चार युग का? 320,000 साल। मतलब 43,20,000 साल, 4.32 मिलियन ईयर्स। और 1000 ऐसे चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो देखिए ब्रह्मा के जी का आयु कितना लंबा है, दिन कितना लंबा है, और उसकी परिमाण ही ब्रह्मा जी का एक रात्रि भी है। सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मा जी का आयु, ब्रह्मा जी का आहु मतलब दिन और रात्रि। तो इस विचार से ब्रह्मा जी का आयु है 100 साल। इस विचार से, इस दिन के विचार से ब्रह्मा जी का आयु है 100 साल। तो हमारे विचार से ब्रह्मा जी का आयु कितनी लंबा है, कितनी ज्यादा है, कितनी दीर्घ है, परंतु ब्रह्मा जी का आयु भगवान का एक श्वास, जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ। और कौन? महाविष्णु का, महाविष्णु का श्वास से, कारण समुद्रों के लेटे हुए महाविष्णु जो श्वास लेते हैं, एक श्वास से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि होता है और उसका विनाश होता है। भाष्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदंड विधानकर्ता
गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
सूर्य जिस प्रकार सूर्य कांतादि मणियों में अपने तेज का कुछ अंश संचार करता है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे प्राप्त शक्ति द्वारा ब्रह्मांड का विधान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। भाष्वान, भाष्वान का मतलब आप जानते, भाष्वान मतलब प्रज्वलित सूर्य, सूर्य को भाष्कर कहा जाता है। भाष्कर, भा का मतलब क्या है? भा का मतलब है ज्योति, और भा प्रदान, ज्योति प्रदान करने वाला जो है वो है भाष्कर। तो इसके कारण सूर्य को यहां भाष्वान मतलब भाष्कर से, सूर्यदेव से, सूर्यदेव का किरण का थोड़ा बहुत प्राप्त होकर जो मणियों में सूर्यकांत जैसे मणियों में ज्योति का प्रकाश होता है, मणि में ज्योति का प्रकाश होता है, जैसे हीरे मोती, हीरे पन्ना ये सब मोती में, ये में मणि में जो किरण होता है वो किरण वो कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। तो वैसे ही ये सूर्य से तेज या ज्योति प्राप्त होकर उस ज्योति को प्रदान करते हैं, प्रकाश करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान से अपना ये शक्ति प्राप्त होकर ये ब्रह्मांड का कार्य संपादन करते हैं, विधान करते हैं। तो जिनसे ब्रह्मा जी ये शक्ति प्राप्त होकर ये विशाल कार्य संपादन करते हैं, उन गोविंद को, भगवान आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। श्लोक 50।
जत पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये जगनाधिराज विघ्नान विहन्तु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
गणाधिराज, गण अधिराज, इसका मतलब क्या है? गण ईश, गणपति, गणेश। गणेश क्या करते हैं? विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य, जगत्रयस्य मतलब तीन जगत का, तीन जगत, ऊपर का, बीच का और नीचे का, स्वर्ग, मर्त और पाताल, ये तीन लोक का जो सारे विघ्न विनाश करते हैं, जितने सारे बाधाएं आता हैं उसका कौन हटाते हैं, दूर करते हैं? गणेश। और दूर करके क्या करते हैं गणेश? सिद्धि प्रदान करते हैं। उसके कारण गणेश जी को सिद्धिदाता कहा गया है। सिद्धिदाता गणेशाय नमः। तो गणेश जी जो ये त्रिभुवन का, त्रिलोक का विघ्न विनाश करते हैं, कैसे करते हैं? जिसके पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभ दंदे प्रणाम समय स गणाधिराज। गो टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, यू डोंट हैव इट टुगेदर। तो सॉरी, डोंट वरी। तो यहां वर्णन हुआ है कि गणेश के ये शक्ति कहां से मिल रहा है। सॉरी, डोंट वरी, जस्ट शो इट। जत पाद पल्लव जुगंग, पाद पल्लव मतलब चरण कमल, दो चरण कमल अपना सर पे, कुंभ उनका तो हाथी का ये हैं, मस्तक हैं, वो हाथी का जो ये जो सामने जो ये हैं उसको कुंभ कहा जाता है। जत पादो पल्लव युगंग विनिधायो कुंभ दंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विघ्नन बिहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य। जिनके पाद पल्लव चरण कमल अपने सिर पर धारण करके ब्रह्म गणेश ये सारे त्रिलोक का त्रिभुवन का सारे विघ्नों को विनाश करते हैं, उनको मैं उन गोविंद को आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। तीनों लोकों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश अपने मस्तक के दोनों कुंभ पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्लोक 51। अग्निर्मही गगनमंबु मरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्रयानि जस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति जंच गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, दिशाएं, काल, आत्मा एवं मन रूपी नौ तत्वों से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं। What happened? अच्छा, actually you mixed up, that 53 is that. Okay. Agnir mahi gaganam ambu marudishascha kalas tathatma manasiti jagatrayani. Ye teen jagat ka jo agni mahi matlab prithvi akash jal vayu dishaye kal atma evang man rupi नौ तत्व से युक्त तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्थित रहते हैं और प्रलय के समय जिनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्लोक 52। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा जस्या गया भ्रमति संभृतो कालो चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम। सविता, सविता कौन है? सविता सूर्यदेव का नाम है। और सूर्यदेव समस्त ग्रह का राजा है, राजा समस्त सुरमूर्ति और अशेष तेजा, उनका तेज अशेष है, अंतहीन है। और वो सूर्यदेव जच्चक्षुरेश उनका आंखें हैं भगवान का। और जस्सा गया भ्रमति संभृत कालो चक्र, काल के चक्र में आरोहण करके उन्होंने भ्रमण करते हैं। इस भ्रमण के कारण सूर्य का उदय होता है और अस्त होता है। तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। सारे ग्रह जो हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनमें सबसे सबसे सर्वोत्तम कौन, सबसे श्रेष्ठ कौन है सारे ग्रहों में से? सूर्य। तो उसके कारण सूर्य को राजा समस्त सुरमूर्ति, समस्त ग्रहों के अधिपति के रूप में वर्णन किया गया है। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं को, देवताओं के प्रतीक हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजना करता हूं। जिनकी आज्ञा से वे सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य क्यों भ्रमण कर रहा है? जस्या गया, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के आदेश के कारण। 53
धर्मोथ पाप निचय श्रुतयस्तपंक्षी ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवा जद्दत्तमत्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
समस्त धर्म, पाप समूह, वेद, तपस्याएं और ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक समस्त प्रकट जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पालित होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। सो ब्रह्मादि कीट पतगावधयाश्च जीवा। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठ जीव है। ब्रह्मा जी से शुरू करके कीट कीट पतंग तक हर प्राणी, हर जीव भगवान के शक्ति के द्वारा ही पालित होते हैं। वो आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। श्लोक 54
जस्तिन्द्र गोपमथ वेन्द्र महस्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
जो एक इंद्र गोप जैसे क्षुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। इस भौतिक जगत में हम सब अपना कर्म के अनुसार उसका फल भोगते हैं। जब हम भला काम करते हैं, पुण्य काम करते हैं, तब उसके फल स्वरूप हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम पाप काम करते हैं तो उसके फल स्वरूप हमें सजा मिलता है, दंड मिलता है। ये कोई कहावत नहीं, ये हकीकत है। तो यहां वर्णन किया गया है जैसे बुरा काम करने से कैसे उसका फल के रूप में हमें मृत्यु के पश्चात हमें दंड मिलता है। बुरा काम करने से, अपराध करने से इस भौतिक जगत में भी हमें सजा मिलता है। केवल इस जगत, इस पृथ्वी पर ही नहीं, उसके फल स्वरूप हमें मृत्यु के पश्चात भी सजा मिलता है। ये जैसे विचार न्यायशाला में न्यायाधीश जज दंड देते हैं, वैसे चरम न्यायाधीश हैं जमराज, धर्मराज। मृत्यु के पश्चात जो पाप काम हम करते हैं उसके विचार जमराज के विचारशाला में, विचारालय में, न्यायशाला में होता है, और ऐसे सजा मिलता है। परंतु जब हम भगवान को, हरि बोल बाबा चेंज इट, जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं, तब हमें ये सारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। जब हम भगवान को भक्ति करते हैं तब हम ये भौतिक जगत के समस्त पापों से मुक्त होकर हम भगवान के पास वापस जाते हैं, जिसके बारे में भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में, आपको याद है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो पाप हम किए हैं सारे पापों से भगवान हमें मुक्त कर देंगे जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं। भगवान को शरण लेने से हम सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये हमें, ये प्रतिश्रुति हमें कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान ही दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरे ही शरण ले लो तब मैं तुमको सर्व पापेभ्यो, समस्त पाप से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। श्लोक 55।
जं क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सिब्ब भावै संचिन्ततस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्रोध काम सहज स्नेह भय वात्सल्य मोह श्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हीं भावों के यथायोग्य रूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। दैट्स द शो द कावर्ड बॉयज, यू कैन जस्ट कीप इट इन दैट।
तो हम जैसे जैसे भाव से, किसी भी भाव से हम भगवान को सेवा कर सकते हैं। काम भाव से भी भगवान का सेवा होता है। क्रोध से भी भगवान को सेवा हो सकता है। जंग कामक क्रोध जंग क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, और सरल प्रेम से उनका भी किसी भी भावना लेकर हम अगर भगवान को सेवा करते हैं या भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो हम उस भाव को प्राप्त हो सकते हैं। जादृशी भावनार जस्य सिद्धिर भवती तादृशी, जैसे 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 भावना लेकर हम भगवान को पास जाएंगे उसी भाव हम प्राप्त होके होंगे। जैसे ये वर्णन हुआ है कि क्रोध के द्वारा, क्रोध से किसको कौन भगवान के बारे में चिंतन किया? शिशुपाल, भगवान को देखते ही उसका उसको गुस्सा आ जाता था। कृष्ण को देखते ही उसका गुस्सा आता था। उसका जन्म के समय में ये विचार हुआ था कि वो कृष्ण का मौसी का लड़का था, तो मौसी का लड़का था, तो ये उसका मृत्यु के जन्म के समय में उसका 4 हाथ और 3 आंखें था। तो ये देखकर जो विद्वान व्यक्तियों ने सब बताया, ये तो असुर है, ये भगवान का प्रतिद्वंदी बन के आया है, तो इसको खत्म कर दो, इसको रखना ठीक नहीं है। जैसे दुर्योधन के जन्म के समय भी विदुर और महान व्यक्तियों ने धृतराष्ट्र को बताया था कि ये कुलांगार है, ये कुल के अंगार हैं। अंगार का मतलब आग। तो अंगार से, आग से क्या होता है? जल जाता है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के कारण पूरा कुल ध्वंस हो जाता है उसे कुलांगार कहा जाता है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि उस समय जो विद्वान महान व्यक्ति थे उनको पता चलता था, आगे भविष्य की दर्शन उन्होंने कर सकते थे, वो सारे विचार करके देख के। क्योंकि दुर्योधन का जब जन्म हुआ तब इतने सारे कुलक्षण का प्रकाश हो रहा था, तो उन्होंने बताया ये तो कुलांगार है, इसके कारण कुल नष्ट हो जाएगा। तो उसको विदुर ने बताया, इसको इसको त्याग दो, इसको खत्म कर दो, इसको जीने जीना ठीक नहीं रहेगा। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह से अंध होकर उसकी बात नहीं माना, और अंत में हम देखा क्या हुआ, सारे कुरु वंश नष्ट हो गया था उसके कारण। तो वैसे ही शिशुपाल का भी हुआ था, बताया गया था कि उसको खत्म कर दो, परंतु उस समय एक विचार ये भी हुआ कि इसका मृत्यु असल में कृष्ण के हाथ में होगा, और कृष्ण से मृत्यु होने से इसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान का हाथ में असुरा हरिना हता, असुरों को भी जब भगवान संहार करते हैं तो असुरों का भी मुक्ति मिल जाता है। तब उनकी मां ने, शिशुपाल का मां ने कृष्ण को विनती किया, कृष्ण तुम इसको अपराध को क्षमा कर देना। कृष्ण बोला ठीक है, हम इसको 100 अपराध को क्षमा करेंगे, 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा। तो 100 अपराध कृष्ण को कितना उन्होंने कितना निंदा किया, कृष्ण को कितना बुरे बातें कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया, बल्कि कृष्ण ने उसको सहन कर लिया। परंतु जब राजस्वीय यज्ञशाला में यज्ञ में होने वाला था, तब वो 100 अपराध अतिक्रम हो गया, तब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको हत्या किया, संहार किया। तो भगवान के हाथ से, भगवान के द्वारा उसका देहांत होने के कारण उसको भी मुक्ति हो गया था। क्रोध से भी भगवान को चिंतन करते हैं कोई तो उसको भी मुक्ति मिल जाता है, और काम से गोपियां ने श्री कृष्ण का अपना प्रेमिक के रूप में उनके साथ संपर्क स्थापना किया, तो उसके कारण सहज प्रणयादि भीति, भय से कंस का मुक्ति हो गया। प्रणयादि भीति, कृष्ण का नाम सुनते ही कंस का भय होता था। जब कंस सुना कि कृष्ण का जन्म हुआ, तब कंस का ऐसे उसका बाल ऐसे खड़ा हो गया, जैसे डर के मारे वो सो रहा था, उसको जगाया गया कि वो वसुदेव और देवकी का अष्टम संतान का जन्म हुआ है। सुनते ही वो कांपने लगा और उसका बाल खड़ा हो गया, कैसे, भय के कारण। काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य, नंद महाराज और मां यशोदा, कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम था, अपना पुत्र के रूप में उन्होंने कृष्ण को दर्शन करते थे। ऐसे सारे भावना लेकर हम भगवान को प्रति हमारा मनोभाव अर्पण कर सकते हैं। परंतु दो भाव होता है, एक है बैरी भाव, शत्रु के रूप में भगवान को दर्शन करना, जैसे शिशुपाल कंस दंत वक्र ने किया था, वो भाव सही नहीं है। बैरी भाव से भगवान को चिंतन नहीं करना चाहिए, अनुकूल भाव से भगवान को चिंतन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। संचिन्ततस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। You could have to, anyway. अच्छा, श्लोक 56 में वर्णन हुआ है, श्रीय कांता कांता परम पुरुष कल्पतरुगो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयम् अमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि
Vamsi Priya Sakhi Chidanandam Jyoti Paramapi Tadashaddam Apicha Sajatra Shirabdhi Sravati Surabhi Bhascha Sumahan Nimeshardhakho Vabrajati Nahi Jatrapi Samaya Bhaje Sveta Dvipang Tamahamiha Golakam Iti Jang Vidantaste Santa Kshiti Birala Chara Kati Paye
Acha Ye Ye Iska Brahmajika स्तब का समाप्ति हो रहा है. अंत में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं उस श्वेत दीप नामक दिव्य धाम को भजता हूं जहां प्रिय लक्ष्मियां अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहां प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहां की भूमि वांछित चिंतामणि है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत हैं, सारा गमन नृत्य है, वंशी जहां प्रिय सखी हैं, जहां की ज्योति चिदानंदमय एवं परम दिव्य जीव आनंदमय और आश्वद्ध हैं, जहां अनगिनत सुरभि गाय चिन्मय महाक्षीर सागरों को प्रवाहित करती हैं, जहां चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है और भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्ध क्षण भी नहीं बीतता है, और जो इस जगत में बिरले भगवान निष्ठो संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना जाता है. तो इस विचार हम पहले भी किया था, चिंतामणि प्रकट सद्मसु पहला श्लोक. ब्रह्मा जी क्या बोल रहे थे, भगवत धाम की जगह कैसी है, चिंतामणि से बना हुआ है. कल्प वृक्ष वहां का जो वृक्ष है वो सारे कल्प वृक्ष है, और वहां के गोपियां सब लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से विमानम, वही यहां वर्णन हो रहा है. फिर से श्रिया कांता, श्रिया लक्ष्मी देवी है, कांता प्रेमिक प्रेमिका, और कांत है परम पुरुष श्री कृष्ण. श्रीयकांता कांत परम पुरुष. कल्पतरुवो वहां का जो वृक्ष है, तरु है, वो सब कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है. और द्रुमा, द्रुमा का मतलब वृक्ष, द्रुम मतलब वृक्ष, वह कल्प वृक्ष है. और भूमि वहां का जो मिट्टी जमीन जो है, भूमि वो चिंतामणि है, भूमिश चिंतामणि गणमय. और तोयम, तोयम का मतलब पानी, वहां का पानी अमृतम, जमुना के पानी अमृत है. वहां का वृंदावन का जो पानी है, सब सारे पानी अमृत है, पानी नहीं है. और कथा गानम, वहां जो बातें हैं, शब्द जो हैं, वो गान है, संगीत है. और नाट्यम गमनम अपि, वहां जो गमन वो है नाट्य नृत्य. वो चलते नहीं, वो नाचते हैं, वो बोलते नहीं, वो गाते हैं वहां सब. और बंसी प्रिय सखी, और बंसी प्रिय सखी है. और चिदानंदं ज्योति परमापि तदाश्रद्धम पीछा, वहां का आश्रदन को क्या हो रहा है, चिद आनंद, चिन्मय आनंद रूप ज्योति का आश्वादन हो रहा है. वो आनंद क्या है, आनंद है मन की भक्ति पूर्ण प्रेम स्वरूप मनोभाव. सजत्र क्षीराब्धि श्रवती सुरभि भश्च सुमहान, वहां का जो गाय है वो सब सुरभि गाय है, और सुरभि गाय से जो जो दूध निकल रहा है वो दूध से एक सागर बन गया है, वो है क्षीराब्धि, क्षीर या दूध का सागर श्वेतद्वीप, क्षीर सागर मिल्क ओशन, क्षीराब्धि श्रावती सुरभि और निमेषार्धा खोबा ब्रजती नहीं जत्रापि समय, वहां समय एक आधा निमेश तक भी वो आगे नहीं बढ़ता, वो समय नित्य है। वहां समय में, वहां का समय में अतीत और भविष्य नहीं है, वो सारे नित्य वर्तमान काल है। वो कैसा है वो हम समझ नहीं पाएंगे, वो समझने के लिए हमको वहां जाना पड़ेगा। वहां जाने से ही हमको पता चलेगा कि समय कैसे एकदम समय नित्य वर्तमान है। निमेषार्धा खोबा ब्रजती नहीं जत्रापि समय, अर्थात अर्ध क्षण भी नहीं बीतता समय, वह अर्ध क्षण भी निमेषार्धक, निमेश का मतलब है वो आंखों में पलक पड़ने में जो समय लगता है उसको निमेश कहा जाता है, वो आधा निमेश तक भी समय नहीं बीतता है वहां। और भजे श्वेत दीपं तमहमिह गोलपं गोलकम इति जन, उस श्वेतद्वीप नामक गोलोक जो धाम है उस स्थान को मैं भजना भजन करता हूं। तो ये ब्रह्मा जी ने बताने के बाद ब्रह्मा, अच्छा उसके बाद मैं सिर्फ अनुवाद ही पढ़ के ये ब्रह्मा जी की सत्यसार गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स मुझसे ये पंच श्लोकी विद्या को सुनो। तो भगवान अब पांच श्लोक में ब्रह्मा जी को एक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो ज्ञान क्या है? जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्ष्मणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तम भक्ति जागृत होती है। अर्थात जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा हमें भक्ति से क्या होता है, भक्ति से ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं आता है, भक्ति से ज्ञान आता है। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति है मां और उनका दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति होगा तो मां के साथ साथ अपना पुत्र भी आ जाता है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य ऐसे ही आ जाता है। ज्ञान वैराग्य युक्तया, ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त है। तो भक्ति के कारण जब ज्ञान के द्वारा, भक्ति और ज्ञान के द्वारा जब शुद्ध चीद अनुभूति उत्तेजित होती है, मतलब चीद अनुभूति हृदय का अनुभूति, कौन सी अनुभूति? भगवान के प्रति प्रेम। तब क्या होता है? तब समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तम भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति जागृत होता है। हम जब भगवान को भक्ति करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। सर्वोत्तम भक्ति की प्रति शास्त्र प्रमाण सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनै शनै होती है। सर्वोत्तम भक्ति क्या है? सर्वोत्तम भक्ति है माधुर्य भक्ति। मधुर रस में ब्रज गोपियां ने जिससे जैसे भगवान को भक्ति किए थे, भगवान के प्रति ब्रज गोपियां को जो प्रेम था वही है सर्वश्रेष्ठ भक्ति। प्रेमा पुमार्थ महान, ये प्रेम ही सबसे सर्वोत्तम भक्ति है। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनै शनै होती है। शनै शनै का मतलब शीघ्र जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है। परंतु ये कैसे कैसे इसको अभ्यास करना चाहिए? शास्त्र के द्वारा, मन की कल्पना के द्वारा नहीं, शास्त्र के निर्देश के अनुसार सदाचार करके और निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा। मैं, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप में हम भगवान का दास हैं। अर्थात भगवान के दास के रूप में जब हम भगवान को प्रभु समझकर भगवान के दास के रूप में हम भगवान को सेवा करते रहेंगे, और वो सेवा कैसी होना चाहिए? शास्त्र के प्रमाण और साधुओं के निर्देश के अनुसार। तब जल्दी जल्दी ही, अति शीघ्र ही ये सर्वोत्तम भक्ति का प्राप्ति होगा, जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त करने में समर्थ है, मेरी उस प्रेम भक्ति का ही साधन करना चाहिए। कौन सी भक्ति का साधन करना चाहिए? प्रेम भक्ति का। प्रेम भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति कितनी प्रकार की होता है? भक्ति वैसे तीन प्रकार की हो सकता है। एक है कर्म मिश्रा भक्ति, एक है ज्ञान मिश्रा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति का मतलब है इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्ति के लिए जो भक्ति, उसे कर्म मिश्रा भक्ति कहा जाता है। और इस जगत से मुक्ति प्राप्त होने के लिए जो भगवान की सेवा या भक्ति, उसको ज्ञान मिश्रा भक्ति कहा जाता है। परंतु ये कर्म और ज्ञान को त्याग कर कुछ प्राप्ति के आशा नहीं करके केवल भगवान की प्रीति साधन करने के लिए जो भक्ति है, वही है शुद्ध भक्ति या प्रेम भक्ति। तो उस प्रेम भक्ति को ही साधन करना चाहिए। मतलब इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्ति के लिए भगवान को सेवा नहीं करना चाहिए, या तो इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कामना करके भी भगवान को सेवा नहीं करना चाहिए। तो कैसे भगवान को सेवा करना चाहिए? प्रेम से। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम से कुछ क्या प्राप्ति का इच्छा रहता है? नहीं। जो असल प्रेम जो है, उसमें उससे कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं रहता है। मैं भगवान को प्रेम नहीं रह सकता हूं, ये है प्रेम का लक्षण। जैसे गोपियां ने कहती थी, राधा रानी कहती है कि मैं क्या करूं, ये कृष्ण को प्यार किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं। और देखो, कृष्ण को प्यार करने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें कितना कठिनाई हो रहा है, और ये हमको दगा देके चला जाता है। ये हमको बोलता है आएगा और नहीं आता है, और देखो अब चला गया मथुरा, और मथुरा से बोला, जाने के वक्त बोला था कि जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो 100 साल बीत गए हैं, नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो भावना, तब ये ऐसा मनोभाव ऐसा होता है कि क्यों मैं उसको प्यार कर रहा हूं, और इसका उत्तर है उसको प्यार किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये है प्रेम की लक्षण। तो ऐसे प्रेम से ही भगवान को भक्ति करना चाहिए, और उस प्रेम से क्या प्राप्ति होता है? आनंद। अच्छा, ये जो 61 श्लोक जो है वो हम पढ़ रहे हैं, श्लोक को भी धर्मान अन्नान परित्यज्य माम एकं भज विश्वसन। जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। कुर्वन् निरन्तरं कर्म लोकोऽयम् अनुवर्तते तेनैव कर्मणा धायन् मां परां भक्तिमिच्छति। हाँ, तो ये श्लोक कुछ याद देता है? हाँ, हाँ? बहुत अच्छा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। एक ही शब्द है ना? हाँ, एक ही मतलब है, एक ही अर्थ है। धर्मान अन्नान परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन। विश्वसन जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। हे ब्रह्मा, तुम मेरा ही शरण ले लो। जैसे भगवान कृष्ण को भी, कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कुर्वन् निरन्तरं कर्म लोकोऽयम् अनुवर्तते तेनैव कर्मणा धायन् मां परां भक्तिमिच्छति। हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्यक करके श्रद्धापूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत कहते हैं, उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं वो अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो उस कर्म के द्वारा हम भगवान को भक्ति प्राप्त होंगे। जैसे भगवान अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करने के लिए बोला। और युद्ध करके अर्जुन को ये प्राप्त, भगवान का कृपा प्राप्त हुआ। तो जो काम हम करते हैं उस काम के द्वारा ही हम भगवान को कृपा प्राप्त हो सकते। केवल चार काम नहीं करना चाहिए, मांसाहार, नशा, अवैध संग और जुआ इत्यादि खेल, ये चार केवल त्यागना, और बाकी जो कुछ काम वो सारे काम करके हम भगवान को सेवा कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट श्लोक, श्लोक 62। अहं हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृति पुमांश्च मया हितं तेज इदं बिभर्षि विधे विधेहि तमाथो जगन्ति। हे ब्रह्मा, सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ, प्रधान द्रव्य या पदार्थ का सत्य, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का ये तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश दिया था जो इस ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है। तो ये ब्रह्म संहिता अध्ययन करके विचार करके हमें क्या हम क्या समझे? पहली बात तो ये है, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, सारे कारणों का कारण है। उनसे ही सब तत्वों का सृष्टि हुआ है, छोटे बड़े सब कुछ उन्हीं का ही, या तो स्वांश हैं नहीं तो विभिन्न अंश हैं। हम लोग उनका विभिन्न अंश हैं। अगर कृष्ण समुन्द्र हैं तो हम एक पानी का बूंद है। अगर कृष्ण सूरज हैं तो हम एक एक कण है, किरण का कण है। तो ये समझकर हमें भगवान को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, क्योंकि अंश का कार्य है पूर्ण का सेवा करना। पूर्ण का सेवा करने से ही अंश का अस्तित्व का अस्तित्व का सार्थकता होता है, सार्थक होता है। तो हम अगर हमारा जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? गोविंद का भजन करना होगा, भगवान का सेवा करना होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? यस, गेट द माइक्रोफोन टू हिम।
कृष्ण महाराज, आपने कल बताया था कि भगवान हमारे हृदय में विराजित हैं, फिर हमारे मन में बुरे विचार कैसे आते हैं? आपने कल बताया था कि भगवान हमारे हृदय में विराजित हैं, फिर भी हमारे मन में बुरे विचार कैसे आते हैं? और यदि हमारे आते बुरी पड़ जाए तो क्या हमारे हृदय से भगवान बाहर चले जाते हैं?
हाँ, अगर हम भगवान को सुनता तब बुरा विचार नहीं होता था। भगवान को हम सुन नहीं रहे हैं। भगवान है परंतु भगवान की ओर तो हम देख नहीं रहे हैं, हम दूसरे ओर देख रहे हैं, भौतिक जगत की ओर देख रहे हैं, है ना? तो उसके कारण हमें हमारा ये बुरा भावना, बुरा कार्य हो रहा है। परंतु जब हम भगवान को मान लेंगे, मतलब मुंह जब हम भगवान की ओर कर लेंगे, तब भगवान ही हमें निर्देश देंगे, जैसे भगवान अर्जुन को दिए थे, जैसे यहां भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, तब हम सही ढंग से कार्य करना करने में सफल होंगे, है ना? हाँ, क्यों? उपद्रष्टा अनुमंता च। भगवान देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, उपद्रष्टा दर्शन कर रहे हैं, और अनुमंता अनुमोदन कर रहे हैं कि हमको क्या प्राप्ति होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ये दर्शक के रूप में भगवान, साक्षी के रूप में भगवान दर्शन कर रहे हैं हमको, और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम हमारा मुंह उनकी ओर घुमाएंगे। जब हम उनकी ओर देखते हैं तब भगवान हमको अपना बना लेते हैं। हरे कृष्ण।